सिविल सेवा परीक्षा के जंग मैदान में मौजूद मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मेरे इस नमस्कार और स्वागत को आप आगामी शनिवार और इतवार के लिए भी स्वीकार करें। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक अन्य नौजवान साथी का, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है नीरज सिंह, आप फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो नीरज, मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अब इस स्वागत के क्रम के बाद कुछ सूचनाएं जो मैं हर शुक्रवार को आपको देता हूं, आज भी देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लाइफ मैनेजमेंट भी नहीं आता है, इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगे। केवल प्रेस क्लिपिंग्स ही नहीं मिलेंगी, बल्कि आपका जो रविवार का दिन होगा उसको भरने के लिए कुछ और एडिशनल चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल होंगे, 2 योजना के हिंदी और इंग्लिश में और 2 कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकें, जिसे मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक रामबाण औषधि मानता हूं, क्योंकि ये काम हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से मौजूद होना चाहिए, कि हम ये कह लीजिए कि सिद्धस्ता क्षमता मौजूद होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, इस सूचना के बाद एक मेरे पास आज आप लोगों के लिए दूसरी सूचना भी है, और इस सूचना को मैं 2 भागों में विभक्त करना चाहूंगा, और इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। पहली सूचना मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, 6 बैचेस हमारे निकल चुके हैं। चूंकि अब आपके प्री एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि जो हमारे फर्स्ट बैच से लेकर के और लेटेस्ट 6th बैच तक के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं, जहां उनको किसी तरह के एडवाइस, किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत है, तो वो प्लीज मुझे ईमेल से लिखकर सूचित करें, और उनको फिर जो उत्तर दिया जाएगा उसका कोई भी मोड हो सकता है, आपको ईमेल के जरिए उसके उत्तर मिल सकते हैं, आपको डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत उसके उत्तर मिल सकते हैं, और अगर बहुत कॉमन कुछ सवाल हुए और उसको उत्तर देने के लिए जरूरी लगा कि इस पर एक अलग से स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो वह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मित्रों, ये क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे जो प्रिय श्रोता हैं, जो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए भी इसी तरह की सूचना है, उनसे भी मैं उनकी समस्याओं को आमंत्रित करता हूं। हाँ, बट नेचुरल है कि उनकी समस्याओं के समाधान के जो मॉडल होंगे वो 2 ही होंगे, या तो उन्हें ईमेल के जरिए हम सूचित करेंगे, या फिर डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से सूचित करेंगे। स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड करना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, चूंकि प्री एग्जाम अब लगभग आप मोटे तौर पर 1.5 महीने ही बचे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं, और कहीं ना कहीं बेचैनी और बेतहाशापन, निराशा, हताशा, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। आने दीजिए, बहुत ही स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है। इसका होना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि हम कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा होता है तब फिर ये लगता है कि नहीं, काम बड़ा है, शायद हम छोटे हैं। थोड़ा थोड़ा होता है तो ये लगता है कि नहीं, अगर काम बड़ा है तो हम भी कोई कम बड़े नहीं हैं, तो वहां फिर वो तालमेल बैठ जाता है। तो आप लोगों से इस तरह के प्रश्न आमंत्रित हैं जो आपके प्रीस की समस्याओं से जुड़े हुए हों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अभी प्री एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मेंस और इंटरव्यू की बात अभी नहीं करेंगे, हमारा ज्यादा फोकस प्री एग्जामिनेशन पर होगा। मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। कल की आकाशवाणी के समाचार कल के सुने होंगे आपने, दूरदर्शन न्यूज भी आपने सुनी होगी। सबसे बड़ी जो खबर है कल के या दूरदर्शन या आकाशवाणी आज के अखबारों में तो खैर वो बड़ी खबर के रूप में नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से वो बहुत बड़ी खबर है, और वो है लोकपाल अधिनियम को लागू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय। लोकपाल अधिनियम न कह दो, आप कह लीजिए लोकपाल की नियुक्ति के बारे में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पर मैं अभी बाद में आऊंगा और इस पर थोड़ी सी मैं डिटेल में भी आपसे बात करूंगा। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स वो है उड़ान की शुरुआत होना। हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश गए थे, आपने देखा कि शिमला से दिल्ली के लिए उड़ान की शुरुआत की गई है। उड़ान पर हम लोग बात कर चुके हैं काफी डिटेल में, मैंने सिविल एविएशन का क्या नेशनल इंपॉर्टेंस है उस पर मैंने एक दिन बात की थी, इसलिए मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा संकेत में एक बात के लिए करना चाहूंगा। ये 128 रूट पर आपने देखा है कि इस तरह के छोटे वायुयान सेवाएं शुरू की गई हैं, यानी कि जो हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज है, छोटे शहर हैं, उनको भी अब जोड़ने की कोशिश की गई है और किराया भी इनका अपेक्षाकृत कम रखा गया है। अगर विमानों को या इन रूट्स पर अपने वायुयान चलाने में दिक्कत होगी तो घाटा होगा, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से फंड बनाया हुआ है और उसकी उनकी पूर्ति की जाएगी। तो डेफिनेटली अगर शहर एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे तो वहां कई तरह के आर्थिक विकास होते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि बड़े अधिकारी जो नेतागढ़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो वहां सुपरवाइजर के सुपरवाइजिंग के लिए बड़े आराम से जा सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, जो मैंने अभी ये बातें बताई हैं आपने अखबारों में भी पढ़ी हैं और आप जानते भी होंगे, इसमें आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हवाई चप्पल पहने हुए लोग भी हवाई जहाज में उड़ सकेंगे। देखिए ये केवल हवाई हवाई का एक लयात्मक तालमेल नहीं है, इसका जो मतलब है वो ये कि अभी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उसको एक बड़े डिफरेंट तरीके से एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रही है, उनका सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रही है। और इस सशक्तिकरण के प्रोसेस में जैसे देखिए जब प्रधानमंत्री जनधन योजना वो भी एक सशक्तिकरण का माध्यम है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया में वो इनफैक्ट जो हमारे यहां अभी एक इलीट कल्चर रहा है, जो अभिजातीय संस्कृति रही है या एक जो सामंतवादी चेतना रही है, उस पर लगातार चोट करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों ये जो चोट करने की कोशिश कैसे कर रही है, लाल बत्ती को समाप्त करना उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लाल बत्ती को समाप्त करना। व्यक्तिगत तौर पर तो देखिए नेता अपने आप में करते रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे जब ऑस्ट्रेलिया के जब प्रधानमंत्री आए थे तो उनके साथ जब अक्षरधाम गए थे तो बकायदे वो जो मेट्रो होती है उसके सेंटर पर गए, उन्होंने टिकट खरीदा और कोई मतलब पब्लिक को नहीं रोका गया, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, और बकायदे वो उस मेट्रो में बैठ करके और अक्षरधाम तक गए। हालांकि वो बड़ी थोड़ी सी ही दूरी है लेकिन कोई बात नहीं, प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने ये स्थापित किया कि हम सब बराबर हैं। और प्रधानमंत्री जी जब शुरू में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यही कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, और हम जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो देखिए उसमें भी सर्वेंट शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये बात अलग है कि हम अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर अपने को सर्वेंट ना समझ करके दूसरों को बाकी सबको अपना सर्वेंट समझने लगते हैं। तो वो इलीट कल्चर है, अपने को अभिजात्य समझना, अपने को विशिष्ट समझना, फिर सर्वेंट कैसा, इस पर लगातार चोट करने की कोशिश हो रही है। और उड़ान में जो हवाई चप्पल का जो सिंबॉलिक अर्थ है वो मैं समझता हूं कि यही है, ये नहीं कि आप साहब हवाई जहाज में एक ऐसा इलीट क्लास ही बैठेगा जो बूट सूट लगाए हुए हो, टाई पहने हुए हो, अंग्रेजी बोलता हो, बहुत पैसे वाला हो, चुपचाप गमगीन अपने आप में रहता हो, ऐसे लोग नहीं, आम लोग भी उसमें बैठने के लिए इंटाइटल है। इंटाइटल तो पहले भी थे लेकिन इंटाइटल होने से क्या होता है, जब वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते तो अब उसको एफोर्डेबल बनाया जा रहा है। तो मित्रों आपको ध्यान होगा कि जब लाल बत्ती को समाप्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक जो जन संस्कृति का विकास करने की कोशिश राजनीतिक स्तर पर की जा रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और निबंध की दृष्टि से भी, तो उस पर आप ध्यान रखें। तो उसमें ये हवाई वाले पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों खबरें दो ही इम्पॉर्टेंट थी। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए आप सब मुझे धन्यवाद दीजिएगा कि सर ने आज कम चीजें दी है पढ़ने के लिए। अब मैं आता हूं लोकपाल पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर इससे पहले प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं प्री में भी और मेंस में भी। तो आइए इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सिंपल सी बात की है। देखिए दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोकपाल की जो बात जिसे हम आज कर रहे हैं, लोकपाल विधेयक तो जाकर के 2013 में एक्ट 2013 में बना, सोचिए 2013 में एक्ट बना, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो ये बहुत लंबे समय से चल रही है। मतलब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जब बना था 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो लोगों की शिकायतें हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसके रिड्रेसल के लिए ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आप सोचिए कि 66 से चला आ रहा है और पता नहीं कितनी बार इसको संसद में पेश किया गया है, अंततः 2013 में ये पारित हुआ है जो तो एक्ट इसको कहते हैं हम, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ये इसका परफेक्ट नाम है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसमें जो लोकपाल है ये व्यवस्था केंद्र के लिए है और जो लोकायुक्त है ये व्यवस्था राज्यों के लिए है। अब ये बात अलग है कि इस एक्ट में राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने यहां करें, वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप बनाइए और आप उसके नियम कानून भी अपने तरफ से थोड़े बहुत कर सकते हैं। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि देखिए एक्ट 2013 में पारित हो गया, राइट, और आज 2017 में है, चार साल मोटे तौर पर हो गए, लेकिन इस बीच में केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। हाँ, राज्यों में हो चुकी है, मतलब महाराष्ट्र श्रेय ले सकता है सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला, वो एक्ट लेकर के आए, मतलब ये लोकपाल विधेयक पारित होने से पहले ही वहां लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी, 1971 में महाराष्ट्र अपने यहां लोकायुक्त की नियुक्ति कर चुका था अपना, वहां उन्होंने एक्ट बना करके। अब आप देखें कि ये क्यों नहीं हो पाई है नियुक्ति, तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है और कहा है कि इसे रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जो लोकपाल की नियुक्ति करने वाली जो कमेटी है उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स कौन कौन से होंगे आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कभी कभी होता यह है कि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनकी नियुक्ति करने वाले कौन कौन लोग होंगे, तो उसमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है अगर हम उसमें चूक गए तो। देखिए प्रधानमंत्री होंगे, बट नेचुरली हमारे हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो प्रधानमंत्री होंगे, उसके चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो कमेटी बनेगी, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, मतलब वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब हमारा देश उनकी नियुक्ति कर रहा है, लोकसभा स्पीकर। और देखिए जब स्पीकर लोकसभा है तो संसद मान ली जाती है ना, फिर राज्यसभा को आप इसमें थोड़ा सा इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद होते हैं फ्रेंड्स एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो विपक्ष दल के जो नेता हैं वो होते हैं, वो तीसरे सदस्य होते हैं। चौथे सदस्य जो होते हैं या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को अब नॉमिनेट कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, नॉमिनेट कर दें अगर वो नहीं जा पा रहे हैं, जो भी बात हो वो होंगे। और इसके बाद एक एमिनेंट जुरिस्ट होगा जो बहुत ही कानूनविद होगा, ये पांच लोगों से ये कमेटी बनती है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब 2014 में ये सरकार चुन करके आई, उस समय उसके बाद आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सरकार ये मान के चल रही है कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 10% उसके पास सदस्य होने चाहिए, यानी कि 540 मोटे तौर पर मान लें तो 54 सदस्य कांग्रेस के पास हो तो लीडर ऑफ अपोजिशन बने वो, लेकिन उतने वो है नहीं, तो सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता नहीं दी। अब सवाल यह है कि चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है और कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होना जरूरी है, तो नियुक्ति की कैसे जाए क्योंकि कमेटी ही नहीं बन पा रही है, तो सरकार ये प्ली लेकर के चल रही थी। साथ ही साथ इस बीच में सरकार ने इस लोकपाल एक्ट में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं, चलिए वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वक्त कम है, हम ज्यादा समय इसको अब देने की स्थिति में हम लोग नहीं है। तो मित्रों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है तो इसको आप इसी आधार पर मत रोकिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। जैसे अब जो लोकपाल एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन में अब ये जो अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन शब्द को शायद निकालने की बात की जा रही है कि इसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द लाया जाए, दूसरा मेंबर इस तरीके से हो। तो अब देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि इसे रोका नहीं जाना चाहिए, कोई डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है कि ये एक महीने में या दो महीने में होना ही चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यदि आपने कल डीडी न्यूज सुनी हो तो उसमें प्रशांत भूषण जी आए थे, एक और भी हमारे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो भी थी, पिंकी आनंद, लेकिन जो पिंकी आनंद तो सरकार का पक्ष रख रही थी, उनके पास भी अपने बड़े जायज पॉइंट थे, लेकिन जो शशिभूषण जो हमारे भूषण जी थे इनके पास अपने बहुत जबरदस्त पॉइंट थे जिसमें सरकार पर वो प्रश्न कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उनका जो मूल रूप से कहना था वो ये था कि इनफैक्ट सरकार चाहती ही नहीं कि लोकपाल की नियुक्ति हो, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति होने के बाद मेंबर एक फ्रेंड्स एक जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि उसके अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा। मतलब अब जो लोकपाल विधेयक पारित हुआ है देखिए उसमें प्राइम मिनिस्टर तक शामिल है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर पर भी अगर कुछ इस तरह के करप्शन के चार्जेस हैं तो वो उनकी भी सुनवाई कर सकता है। ये बात अलग है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको संविधान में जो छूट मिली हुई है आर्टिकल 105 के तहत, तो वो विमुक्ति तो रहेगी, बाकी मामलों में सबको उसमें रखा गया है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजनेता नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई संस्था बने जो तलवार की तरह उनके सिर पर लटकती रहे, लेकिन दूसरी ओर देखिए कि लगातार हमारी जो अभी की सरकार है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार स्ट्रगल की बात कर रही है। न्यूज में भी आपने सुना, न्यूज की पहली लाइन ही थी कल के न्यूज की कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में यही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, और लोकपाल की नियुक्ति एक प्रकार से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही एक संघर्ष है, उसका एक संस्थागत संघर्ष है आप कह सकते हैं। और मित्रों एक बात और भी है, आपको मालूम है कि जो अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में हमारे केजरीवाल जी एक बहुत ही एक लीडिंग रोल में थे, वो लोकपाल विधेयक के लिए ही वो किया गया था, जो एक तरह से भ्रष्टाचार विरोधक आंदोलन का के रूप में बदल गया था। और इसी आंदोलन से फिर जब केजरीवाल जी निकले उनको राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि मिली और फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, इसके बाद का सारा इतिहास आपकी आंखों के सामने है, आप जानते हैं। तो लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और चूंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट न केवल सिविल सर्विस के लिए टॉपिक ही है बल्कि पूरे देश के लिए है, तो इस पर आपकी बकायदे निगाह होनी चाहिए। तो मित्रों लोकपाल के बारे में बस इतना ही, अब मैं आता हूं अंतिम ईमेल के चरण पर। सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इस AFE का क्या मतलब, AFEIAS.com है ना, तो मैं आपको बता दूं कि AFE ये इंस्टीट्यूशन का फुल जो फॉर्म है उसका शॉर्ट नेम है, A फॉर एकेडमी, F फॉर फॉर, E फॉर एक्सीलेंस, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस उसका शॉर्ट फॉर्म है AFE, फिर IAS.com तो आप जानते हैं। तो दोस्तों वो है, मित्रों मैं तीन दोस्तों के अलग से नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने लिखा है कि वो AFEIAS.com के बारे में लोगों को लगातार बता रहे हैं और उनको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिल रही हैं इसमें। उसमें एक है धीरज कुमार जो बेगूसराय बिहार से हैं, एक है चंदन प्रताप लेकिन उन्होंने अपने स्थान का नाम नहीं लिखा है, और एक है नागेंद्र मणि त्रिपाठी जो इलाहाबाद से हैं और अपने यूनिवर्सिटीज में बहुत से स्टूडेंट को उन्होंने AFEIAS.com के बारे में बताया है और बहुत से स्टूडेंट ने सुनना भी शुरू कर दिया है, वो ग्रुप बना करके भी सुनते हैं। तो धीरज, चंदन और नागेंद्र मणि, इस सहयोग के लिए मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इनफैक्ट अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि मित्रों अगर इस एकेडमी की कोई ताकत है तो वो सिर्फ आप ही लोग हैं, अदरवाइज कोई ताकत नहीं है, आप ही इसकी ताकत हैं, सुनने वाले श्रोता के रूप में भी और दूसरों तक खबर पहुंचाने वाले राजदूत के रूप में भी आप ही हैं। तो मैं फिर आप सबसे अपील करूंगा कि जहां भी आप एक दो जब भी आपको कोई भी ऐसा पात्र दिखता है कि इसको बताया जाना चाहिए तो आप तो अपनी तरफ से बता दें, फिर वो उनके ऊपर है कि वो इसको आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। तो मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ अन्य मित्रों के नाम हैं, प्रवीण शर्मा जो कटिहार बिहार से हैं, रवि जड़िया जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, संदीप कुमार चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से हैं, नीरज त्रिपाठी, हेमराज साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, वेंकटेश पटेल हिम्मतनगर गुजरात से हैं, धनंजय त्रिपाठी, शुभम कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और दीपू वर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब चूंकि शनिवार और रविवार को मैं आप लोगों को मिस करूंगा, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरा पूर्व अभिवादन स्वीकार करें और शुभकामनाएं भी, और इसी के साथ ही मुझे अनुमति दें। नमस्कार।